अजीज भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं कि ये रुकू हमारा 16वां रुकू, यहाँ पे 16वें रुकू की 3 आयात है इसके अंदर, और फिर 17वां रुकू तकरीबन तकरीबन पूरा मुकम्मल है। इसमें 17वें रुकू में एक आयत और है अमेवा की मिला, तो चूंकि वो भी बिल्कुल जो जो आखिरी 143 नंबर आयत है उसके साथ उसका हिस्सा है, जुड़ी हुई है, यही मजमून है। हमें वक्त मिला तो इंशाल्लाह उसका भी मुताला जो है वो करेंगे। आपको जहन में ये याद दहानी रहे कि सूरह अनाम का आखिरी हिस्सा है, इसके बाद इसके दो जो है वो सबाक और मौजूद हैं, और ये वो हिस्सा है जहां पे पूरी की पूरी सूरत अल्लाह ताला की तौहीद और आखरत के मजामीन पे मुश्तमिल है। खास तौर पर मुशरिकीन के अकायद इस हिस्से के अंदर जो है वो बयान किए गए हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला के मुतल्लिक उनके मुख्तलिफ अकायद, ख्यालात और अल्लाह ताला की निस्बत किस किस्म के वो नजरियात रखते थे, या अल्लाह ताला की निस्बत किन किस नजरियात को अल्लाह ताला की तरफ निस्बत देते थे, और खास तौर पर यहाँ पे फिर हराम और हलाल के हवाले से जो उनके अंदर गलत अकायद और नजरियात रच बस गए थे उन पे जो है वो की गई है, तनकीद की गई है। और आज के मजमून के अंदर, आज के इस सबक के अंदर भी यही चीज शामिल है, इसको इंशाल्लाह हम तफसील से देखें। वकालू, और वो कहते हैं, ये 3 आयात जो आज पढ़ेंगे ये असल में जो है मजामीन के मजमून के अतबार से तो पिछले रुकू का हिस्सा है। वकालू हाजी, वकालू, और वो कहते हैं हाजी, ये हाज आपको पता है मुजक्कर के लिए कहते हैं, और हाजी जो है मुअन्नस के लिए। अनआमुन, वो कहते हैं कि अच्छा ये अब जो है उन्होंने ये जो लफ्ज है इसका लफ्जी तर्जमा हमने लिखा है कि उन्होंने कहा, यानी ये माजी है, लेकिन तर्जमा में आप देखेंगे तमाम अक्सर तर्जमों में यही लिखा होता है कि वो कहते हैं, और वजह ये है कि माजी की बात बयान हो रही है, इसलिए जो है हम ये तर्जमा भी मुमकिन है और सही है, और इसमें कोई गलती नहीं है कि वो कहते हैं, हालांकि लफ्जी एतबार से ये सही है कि उन्होंने उन्होंने कहा, यानी ये माजी है। हाजी ही अनाम, ये मवेशी, वो हर्सुन, और हर्स जो है हम पढ़ते चले आ रहे हैं, इससे पहले भी कई दफा आ चुका है, खेती के लिए जो इस्तेमाल होता है लफ्ज हिजरुन, ये मवेशी और ये खेती जो है हिजरुन, हिजर का जो मतलब है हम पहले इससे पहले हिजर पत्थर के लिए पढ़ चुके हैं, वादी हिजर जो है एक वो जो है वो कौम थी जिस जो जो आद की जो कौम जिसमें वहां पे वो आबाद थी, वो भी उस एक मानी इसका ममनू है, और जो है वो अगर आप इसको यानी लफ्ज को याद रखना चाहें तो इसको पत्थरी के हवाले से याद रख सकते हैं। और खेती जो है वो ममनू उसके मैन इस माने में है हिजर मैन, कि अगर पत्थरों से कोई सी की कोई चार दीवारी बना दी जाए, तो कोई दीवार बना दी जाए, कोई बाउंड्री लगा दी जाए, तो ये जो किसी जगह का इहाता करना है यानी पत्थरों से, तो ये हिजर है। अब देखेंगे ये जो तस्वर होता है, जो आप देखेंगे आज का जो मॉडर्न तस्वर है ट्रेसपासिंग का, वो ये है कि ये एक हदूद लगा दी गई है, ये एक जो है वो बाड़ लगा दी गई है, ये हदबंदी कर दी गई है, और उसके अंदर जो चीज है वो जो है वो प्रोटेक्टेड है, वो ममनू है दूसरों के लिए, या उसे गुजरना, उस पर ट्रेसपास करना, उस पर उसको तसरुफ में लाना ममनू है। तो इस हवाले से इस हिजर के लफ्ज में ममनू के जो है वो मानी पैदा हुई है, क्योंकि दीवार जो होती है वो रोक पैदा करती है, या कोई भी चीज आप अहाताबंदी कर लें किसी चीज की तो वो फिर रोक पैदा करती है दूसरी चीजों को, बाहर की चीजों को, हक मिल्कियत को, हक जो है वो कह लें ट्रेसपासिंग को, वो ममनू कर देती है। इस वजह से इस हिजर में ममनू या ममनू के मानी पैदा होते हैं, और इसी वजह से फिर हिजर जो है ये शरीयत में या फिक में वो चीज है जिसको कोई भी शरीयत ने जिस चीज को खाना मना कर दिया हो वो फिर जो है वो हिजर कहलाती है, इस हवाले से ये हिजर। और इसी से एक लफ्ज हुजरा हमारा इस्तेमाल होता है, पत्थरों से बना हुआ जो मकान है। हुजरा वैसे तो कोई भी कच्चा छोटा सा झोंपड़ा जो है, या फिर खास तौर पर पुराने जमाने को बताया गया, अगर पत्थरों से कोई मकान बनाया गया जाता था पत्थरों को जोड़कर एक दूसरे के ऊपर, तो वो फिर हुजरा कहलाता है। और ये ममनू, वो कहते हैं कि ये खेती और ये मवेशी ममनू है। ला यत अनोहा, अच्छा आप जेहन में रहे कि ये जो है ये उनके खाने पीने, उनके तसरुफ, मवेशियों के तसरुफ, उनकी खेती और उनके जो जो भी चीजें प्रोड्यूस होती थी اس کے متعلق جو ان کے حلال حرام کے تصورات تھے اس پہ یہ بات جو ہے وہ کی جائے گی اس آیات کے اندر، اس سبق کے اندر. تو پھر ذہن میں رہے کہ یہ ساری بات اسے پس منظر میں ہے. لا یطعمها، لا نہیں یطعم، ہا اس کھاتے اس کو، ہا یعنی اس چیز کو، یعنی یہ دونوں چیزیں جو آگے جن کا ذکر کیا گیا ہے، انا مویشی اور یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو کھیتی ہے، اس کو نہیں کھاتے. الا اس کو نہیں کھاتے، اس کو اب دیکھیں اس کو وہ جو لفظ دوسرے کلر سے جو ہے وہ ایکسپریس کیے جاتے ہیں، تھوڑا سا ڈفرینٹ کلر جو ہے دیا جاتا ہے، ان کو آپ نوٹ کیا کریں کہ اس کے کیا معنی ہیں تو اور کہاں اس کو، یعنی ان چیزوں کو جن کے اوپر ذکر، اس کو نہیں کھاتے مگر من نشاء، من وہ جو نشا، شاء جو آپ کو پتا ہے چاہنے کے معنی میں آتا ہے، اور نون پیش نون ہے ہم کے معنی میں، فرسٹ پرسن پلورل ہے ہم، مگر وہ جس کو ہم چاہیں، اس کو وہ صرف وہی کھائیں گے جس کو ہم چاہیں، جنہیں ہم نے ڈکلیئر کر رکھا ہے کہ یہ کھائیں گے صرف وہی کھاتے. بزامہم، بزام زام بازر بی سات، زام جو ہے وہ خیال گمان، زوم جسے اردو میں کہا جاتا ہے، ہم ان کے، ان کے اپنے گمان میں، ان کے خیال میں. وانام حرمت، وانام اور مویشی حرمت، حرم حرام کی گئے اور مویشی حرام کیا گیا، ظہورہا اور یعنی کچھ مویشیوں کے حرام کیا گیا، کیا چیز، ظہورہا ان کی پشت، یعنی پشت پہ چڑھنا جیسے کہتے ہیں، پشت پہ سواری کرنا، پشت پہ چڑھنا، تو وہ جو ہے ان کی پشت جو حرام کی گئی، ان کے اوپر چڑھنا حرام کیا گیا ہے. وہ انعام اور کچھ مویشی، یعنی انعام کچھ مویشی، لا یذکرون نہیں ذکر کرتے، نہیں پڑھتے ذکر کرتے، اسم اللہ علیہا اس پر اللہ کا نام، اور کچھ مویشی، اور کچھ مویشی نہیں ذکر کرتے اللہ کا نام جن پر. تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو پیچھے بات کی گئی ہے، کچھ مویشیوں کو حرام کیا گیا ان پہ چڑھنا، ان کا ان پہ چڑھنا نہیں ہے، اور کچھ مویشی وہ بھی حرام ہے، ان پہ اللہ کا نام لینا بھی حرام ہے، جن پہ ان پہ اللہ کا نام، جن پہ وہ آپ کو پتا ہے کہ ذبح جو کرتے تھے تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، تو جو جس کے لیے وہ ذبح کر رہے تھے اس کا نام لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کا نام یہاں پہ بالکل خصوصی طور پہ اس چیز پہ نہیں لینا، تو وہ بھی وہ کہتے تھے. پھر یہ چیز بھی وہ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ چیز بھی پھر کھانا جو ہے اس طرح. افترا علیہا، افترا ان علیہا گھڑتے ہیں، افترا جو ہے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، افترا اردو میں تو جھوٹ کے معنی میں یہ مستعمل ہے، گھڑتے ہیں جھوٹ اس پر، یعنی اللہ پر، علیہی علیہو ہے، علیہو ہے، یعنی اس پر گھڑتے ہیں جھوٹ، اللہ پر گھڑتے ہیں کہ وہ یہ اس کو نسبت اللہ کی طرف دے دینا، تو پھر جو ہے کہ جس پر جو اللہ کے نام لیا جائے تو وہ بھی، تو اس طریقے سے جو ہے یہ اللہ پہ جھوٹ گھڑنا ہے. سیجزیہم، یہ دیکھیں یہ جو ہے تین لفظ ہیں، سا جو ہے حرف استقبال ہے ان قریب، جزا ہے آگے، اور ہم ہے، اللہ تعالیٰ ان قریب بدلہ دے گا ان کو، بہت جلدی جو ہے بدلہ دے گا، اور بدلہ جو ہے ظاہر ہے جو ہے یہاں پہ جو ہے بدلے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو سزا دے گا. تو عام طور پر اردو میں بھی عربی میں بھی جزا جو ہے یہ جو ہے اچھے بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل لغوی معنی اس کے جو ہے جزا کے بدلہ یا صلہ ہے، جو اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، قرآن میں یہ دونوں معنی کے اندر استعمال ہوا ہے. بما کانوا یفترون، اس کے بدلے، یفترون جو وہ افترا کرتے تھے، اس کے سبب، بما کانوا اس کے سبب، اس کے ساتھ جو وہ افترا کرتے تھے، یعنی اس کے سبب، اس پر جو وہ افترا کرتے تھے، اللہ ان کو ضرور جو ہے سزا دے گا. اس کے ترجمہ پڑھنے ساتھ پڑھنا چاہتا، کہتے ہیں یہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساخت ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بردباری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے. ان قریب اللہ انہیں ان افتراء پردازیوں کا بدلہ دے گا. اب یہ جاہلیت کا ایک دستور جو وہاں پہ رائج تھے ان میں سے ایک ہے، اور اس کی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ مشرقین عرب کی چند جاہلانہ رسومات جو ہے وہ تھی، ان کا قید کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ جاہلانہ اور شرکی رسوم جو تھی उनको कैसे मिली थी, उनके जो मजहबी तबका था, उनके जो प्रोहत थे, मुजावर थे, काहन थे, जो जिनकी तरफ वो रुजू करते थे, उनकी जो क्लर्गी थी, यानी उन्होंने घड़ कर उनको अल्लाह की तरफ मनसूख कर दिया था कि देखो ये चीजें अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ने इनको ऐसा किया है, और ये लोग जो है कोई इस पे सवाल उठाने से कासिर थे कि बताओ भाई कहाँ पे अल्लाह ने ऐसा जो है वो किया है। और इनमें कुछ और भी ऐसी थी जिन्हें बाज खेतों और जानवरों की नजर मानकर पाबंदी लगा देते थे कि ये नजर और न्याज इसको और कोई नहीं खा सकता, वो ही खाएगा जिसको प्रहोत जो है या जिसको ये जो उनके मुजावर हैं वो कहेंगे वही खाएंगे। बाज जानवरों पर सवारी ममनू करार दे रखी थी, और ये वही जानवर होते थे जो आमतौर उन्होंने इसके जो अपने स्थान थे, जो अपने बुखाने थे, उनके लिए जो वक्फ कर रखे होते थे वही बोलते थे। कुछ जानवरों के बारे में तय कर लेते कि जब ज़बह करना है तो अल्लाह का नाम हरगिज नहीं लेना, ये कर लेते थे, और ना फिर उनपे सवार होकर हज को जाते हज करते थे, कहते कि सवारी पी कर मना है, हज पे भी नहीं जो है इस पे हज पे, जाहिर है ऊंट वगैरह का जो खास तौर मामला होता था तो वो ऊंट सबसे बड़ी सवारी का जरिया था, उस पर फिर सवारी भी नहीं कर सकते थे। अगर ये जानवर हमला होते जो उनके पेट में होता उसको वो मर्दों के लिए हलाल और औरतों के लिए हराम समझते थे, लेकिन अगर वो मुर्दा हालत में पैदा होता तो कहते थे कि सबके लिए हलाल है। तो इस तरह की मन घड़त किस्म के जो अकायद थे और दस्तूर उन्होंने बना रखे थे। यहाँ पे इन सब की तरदीद की गई, फरमाया गया कि ये सब तुम्हारे खुद साख्ता और बेहूदा अकायद हैं, इन फर्जी और ख्याली कवानीन और उस पर रवाज की अल्लाह ताला की तरफ कोई नस्बत नहीं है, ये अल्लाह ताला की नस्बत इन्होंने झूठ बांध रखा है। बल्कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि शिर्क की बड़ी मकरूह तरीन शक्ल है, और इससे शरीयत मुकर्रर करने और कानूनी साजी का जो हक सरासर अल्लाह ताला का है उन्होंने अपने लिए मखसूस कर दिया है, पुरोहितों को दे दिया है, पुजारियों को दे दिया है, क्लर्गी को दे दिया है, और अल्लाह ताला ने फिर इस सब को यहाँ पे जो है इफ्तरा झूठ करार दे दिया है कि ये सारे का सारा झूठ है, अल्लाह ने कोई ऐसी सनद जो है वो नाजिल नहीं की है। अब जो है हमें पता चलता है कि ये जो जाहिलियत के खदुखाल है, हम देखें कि जाहिलियत कोई ऐसी नहीं है कि कोई आज का फिनोमेना है या पहले जमाने के अंदर कह ले कि सिर्फ जाहिलियत थी आज की नहीं है, बल्कि जाहिलियत हमेशा से मौजूद थी। हमें देखते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से जो है वो जाहिलियत की पूरे उनके अखबार मौजूद हैं कि किस तरीके का उनका रवैया था, और फिर थ्रू आउट द हिस्ट्री जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम और रसूल आते रहे हैं उनकी मुखालफत करने वाले इसी जाहिलियत के अलमरदार रहे हैं, और एक जैसे उनके आर्ग्यूमेंट रहे हैं और एक ही तरीके का रहा है। जमानो मकान से कतअ नजर जो है वो जाहिलियत के कुछ जो है वो खसूसियात मुश्तरक हैं, चाहे वो कदीम जाहिलियत हो या जदीद जाहिलियत हो, उनमें ये बातें जो है मुश्तरक तौर पर पाई जाती हैं कि एक उनमें से ये है कि दीन महज अकीदे का नाम है, बस ये कोई निज़ाम जिंदगी, कोई इज्तिमाई ढांचा, कोई सियासी और इक्तसादी निज़ाम नहीं है, पूरी पूरी जिंदगी का अपना दार अख्तियार जो इसको यानी इसमें ले सकता हो, कोई दीन ऐसा नहीं है या दीन की कोई जो अख्तियार जो है जिंदगी के दूसरे जो शोबे हैं जो रहनुमाई जो है वो कोई मौजूद नहीं है। तो जाहिलियत का पुराने जमाने की जाहिलियत का भी वो कहते थे कि भाई देखो ये प्रोहत जो है जो कुछ कह रहे हैं या जो जो है वो जो बुतखाने की और जो आप कह लें कि मस्जिद की जिंदगी है बस वही दीन है, उससे बाहर कोई दीन का जो है वो नहीं। और आजकल भी देखें तो जदीद जाहिलियत और आप कह लें कि सेकुलरिज्म की बुनियाद ही यही है कि सेकुलरिज्म ये नहीं कहता कि खुदा को मत पूजो, बल्कि सेकुलरिज्म कहता है कि खुदा को पूजो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये तुम्हारे इनफरादी अफाल हैं, इनका जो है जिंदगी से, जिंदगी के निजाम से, जिंदगी के जो तामुल जो हम एक दूसरे से करते हैं रोजाना की बुनियाद पर, जिंदगी इज्तिमाई जिंदगी के जो खद खाल हैं उनसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो है सेकुलरिज्म है और यही जो है जाहिलियत का एक आप कह लें कि वस्फ है और खसूसियत है। हर जाहिलियत जो है एक मखसूस दुनियावी निज़ाम कायम करती है, उसके अपने कुछ जो है वो दावे होते हैं, कुछ अपने उसका एक नरेटिव होता है, और उसके अंदर उस निज़ाम के अंदर हाकमियत और इक्तदार आला अल्लाह ताला के सिवा दूसरों के लिए होता है, पार्लियामेंट को हासिल होता है, लोगों को हासिल होता है, कोई पोलिट ब्यूरो होता है उसको हासिल होगा, और उनका दावा ये होता है कि वो मजहब का एहतराम करते हैं, ये जो हकमियत आला है, ये जो हुकूमत है, ये जो तरीक़ेकार है, ये जाहिलियत जो है ये मजहब का एहतराम करती है, लोग अपनी अपनी बातें करें कोई मसला नहीं है। तो गोया ये दाम हम रंगे जमीन है, क्योंकि दाम मतलब कि इस तरीके से वो कहते हैं कि देखिये वो मजहब के हमदर्द बनकर जो है ये एक جہلیت کا جو ہے نظام اس جو ہے اس میں نظام کے اندر، نظام زندگی کے اندر یا لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اور یہ اس لیے ہے، اور یہ خاص طور پر جدید جہلیت کا جو ہے آپ کہہ لیں یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ آج تک کوئی مکمل ملحدانہ خالصتاً الہاد کی بنیاد پہ کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا انسانی تاریخ کے اندر. اس لیے عالم اسلام میں تحریف، کوئی تغیر، یہ لا دینیت کا فروغ جو ہے بھی جب ہوگا تو وہ دین کے نام سے ہی کیا جاتا ہے. اور اس کی سب سے عمدہ مثال یہ ہے کہ دین تو بھائی بندے اور خدا کا ذاتی معاملہ ہے، دین مسجد کی چار دیواری تک محدود ہو اور انسانی زندگی کے تمام پہلو اور گوشوں کی رہنمائی یہ انسانی زندگی کے لیے قوانین جو ہے وہ انسان کے بنائے ہوئے ہوں، نہ کہ خدا کے بنائے ہوئے ہوں. خدا نے کوئی چیز اگر نازل کی ہے 1000 سال پہلے 1500 سال پہلے تو وہ آج کے لیے جو ہے ریلیونٹ نہیں ہے. یہ جو ہے جہلیت کا دعویٰ ہے، یہ اس کے نریٹو ہے سیکولرزم کا آج کل کے دور کے اندر ہمیشہ سے جو ہے. آپ دیکھیں کہ ایک جو ابھی ہم نے بات کی ہے، ایک مسلمان معاشروں کے اندر بھی ایک تجربہ کیا گیا. آپ دیکھیں گے پچھلی صدی کے اوائل میں جو ہے پہلے اس میں جب خلافت کو ختم کیا تو بالکل ایک خالص الہاد کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تجربہ جو ہے وہ کیا گیا اور وہ سخت ناکام رہا. اور پھر اس کی جو ہے وہ اس کو جو ہے آرگومنٹ اس کو جو بام پہنچانے والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں وہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ دین کی بھی نفی نہیں تھی اور اس طرح کی جو آرگومنٹ پہنچائے دیتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل ایک خالص الہادی ملحدانہ تجربہ تھا جو بالکل مکمل طور پر ناکام ہوا، اور وہاں کے رہنے والوں نے مکمل طور پر اس کو ریجیکٹ کر کے جو ہے وہ اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے. اچھا، انسانوں کی یہ روش جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہے، اور کہ وہ کوئی جو ہے وہ یہ کام جو ہے سارے کریں، اور جو حکمیت کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر دوسرے اداروں کو جو انسانوں کو سونپ دیں، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ جو ہے افترا باندھنے اور اس کی جانب خود سخت قوانین کی طرف نسبت دینا جو ہے یہ ان لوگ جو بھی کرتے ہیں ایسا ان کو ان قریب جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ پہنچے گا. اور یہ ان آیات پہ اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ فرمایا ہے کہ سجزیہم بما کانوا یفترون، سجزیہم وصفہم، ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو وصف ہیں، ان کے جو اوصاف ہیں اور یہ جو کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بھی جو جھوٹ باندھتے ہیں، نسبت دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. تو اس سے جو ہے ایک بات بالکل طے ہو جاتی ہے کہ حاکمیت اور قانون سازی کا حق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. اس کو بہت اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وقالو، اور وہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا، جو لغوی ترجمہ انہوں نے کہا، ما فی بطون، ما فی جو کچھ ہے بطون میں، بطن پیٹ میں، جو کچھ ہے پیٹوں میں، بطون جو ہے وہ بطن کی جمع ہے، بطن کا مطلب لفظی مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے، تو پیٹ کے اندر ظاہر جو کچھ ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے بطون کہا جاتا ہے. ہاذہ الانام، انہوں نے کہا کہ جو کچھ پیٹوں میں ہے، ان ہاذہ الانام، ان مویشیوں کے، خالصت لذکورنا، خالصت، خالص طور پر جو ہے مخصوص طور پر، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے. ذکور جو ہے ذکر کی جمع ہے، ذکور، ذکور ذکر، مذکر مرد کے لیے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمارے، دیٹس اونلی فار آر میلز. وہ محرم، اور حرام کیا گیا، علی ازواجنا، اور ہماری بیویوں پر جو ہے وہ حرام کیا گیا ہے. یہاں پہ اگر یہ مرد ازواج کہے گا تو پھر اس سے مراد اس کی بیوی ہوگی، اور اگر عورت ازواج کہے گا، کہے گی، تو پھر اس سے مراد اس کا مرد ہوگا. تو یہاں پہ چونکہ مرد کا ذکر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تو پھر جو ہے وہاں پہ ازواج سے مراد بیوی ہے، ویسے ازواج کے معنی یہ ہے کہ دونوں ہوتے ہیں. وَإِن يَكُن، اور اگر ہو، مَيْتَةً، مردہ، اگر ہو وہ مردہ، یعنی جو کچھ پیٹوں میں ہے، بچوں، بچہ جو ہے جانوروں کے، جانوروں کے پیٹوں میں ہے جو ان کا بچہ، فَهُمْ، تو وہ، فِيهِ شُرَكَا، تو سب اس میں شریک ہے، یعنی وہ سب کے لیے، مرد بھی اور عورت بھی، دونوں کے لیے، یعنی اس کے ان کے لیے حلال ہے. سَجَزِيهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان قریب جزا دے گا ان کو، بدلہ دے گا ان کو، سزا دے گا ان کو، وَصْفَهُمْ، ان کے وصف، یا ان کی جو صفت بیان کرنے کا، ان کی وہ بدلہ دے گا ان کو، ان کی صفات بیان کرنے کا، یا یعنی وہ جو وہ ان کے جو وصف ہیں جو ان کے بدولت یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی بدولت جو صفت ہے ان کی. انہو بے شک وہ حکیم بہت حکمت والا ہے, علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے. قد خسر الذین, قد یقینی طور پر, قد کا لفظ جب بھی آتا ہے تحقیق کے معنی میں آتا ہے, بات سب پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے یقینی طور پر. خسر الذین, خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ, قتلوا اولادہم, جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو, صفحا بے وقوف ہوتے ہوئے. جو ہے صفحا جو ہے یہ یقول السفہاء, سفہاء جو ہے وہ یہ بے وقوف پلورل, بغیر علم احمق ہوتے ہوئے, بغیر علم, علم کے بغیر ہوتے ہوئے, احمق ہوتے ہوئے. وحرموا, اور انہوں نے حرام کیا, ما اس کو جو رزقہم اللہ, اللہ نے ان کو جو رزق دیا اس کو حرام کر دیا. افتراءً علی اللہ, اور افتراءً علی اللہ, اور جھوٹ باندھا اللہ پر, جھوٹ گھڑتے ہوئے. افتراءً ہے یعنی یہ ایسا ہوتے ہوئے, یعنی یہ ان کا حال ہے, تنوین ہے, اس لیے جو ہے یہ اس کا حال بتایا گیا. افتراءً جھوٹ گھڑتے ہوئے, اللہ اللہ پر, قد ضلوا, یقیناً وہ گمراہ ہو گئے, بھٹک گئے. وما کانوا, اور وہ نہیں ہیں مہتدین, ہدایت پانے والے, وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. دو آیات کا ترجمہ پڑھ دیں.
اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام, لیکن اگر مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دیکھ رہے گا, یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے.
جزاک اللہ. اب دیکھیں کہ جو ہے یہاں پہ اصل تو حلال و حرام کا مسئلہ ہے, اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھو کچھ چیزوں کو وہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ حرام قرار دے دیتے, اپنے مردوں کے لیے حلال قرار دے دیتے. تو بنیادی طور پر ایک پیٹریارکل سوسائٹی تھی, یہ جو ہے پیٹریارکل سوسائٹی, کہ جہاں پہ جو ہے مردوں کے حقوق جو ہے وہ زیادہ ہوتے تھے اور عورتوں کے لیے بالکل حقوق نہ ہونے کے برابر تھے. لیکن دیکھیں, یاد کریں کہ اسلام نے جب آیا ہے تو جو حقوق جو ہے عورتوں کو حاصل نہیں تھے بطور انسان, یا جو حقوق بطور انسان مرد کو حاصل تھے, اللہ تعالیٰ نے وہی حقوق جو ہے عورت کو بھی دیے اسلام نے. اچھا, اس لحاظ سے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی تخصیص نہیں ہے, دونوں کو جو ہے وہ دیے اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے. ہاں, جہاں پہ جو چیز مرد کے لیے نہیں تھی وہ مرد کو نہیں دی گئی, اور جو چیز عورت کے لیے نہیں جو تھی وہ عورت کو نہیں دی گئی, یہ ضرور اسلام کے اندر یہ فرق کیا گیا ہے. لیکن جہاں پہ یعنی جنرل حقوق کی بات آئی ہے تو وہاں پہ مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی اسلام کے اندر. یعنی ایک چیز اگر حرام ہے تو وہ کیسے مرد کے لیے حلال ہے اور عورت کے لیے حرام ہے, تو اس کو جو ہے وہ بالکل اسلام نے جو ہے وہ اس کا بیوقوفی کی ہے. اب جو ہے وہ ساتھ جو ہے اس کے چونکہ اگلا جڑا ہوا ہے, ہم اس کو بھی پڑھیں گے. وَهُوَ الَّذِي, وَهُوَ الَّذِي, اور وَهُوَ, اور وہ ہے, الَّذِي, وہ جو, تو اور وہ ہے جو, انشا, جس نے پیدا کیا. تو دیکھیں وہ ہے جو, اس کا جو ہے, اب اس کو جو اب اپنی زبان کے اندر جب گئے, وہ وہی ہے جو, تو وہ وہی ہے جو اس نے پیدا کیا, انشا پیدا کرنا, جنات باغوں کو, معروشات چھتریوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں کے, ان جو باغات ہیں, اور پھر جو ہے اسی سے دوسرے بالکل لفظ ملتا جلتا دیکھ لے, وہ غیر معروشات, اور وہ جو معروشات نہیں, اس نے باغ پیدا کیے جو معروشات ہیں اور اس نے باغ پیدا کیے جو معروشات نہیں ہیں. اب یہ معروشات کا لفظ جو ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ بیل, وہ بیل, سوری, جو 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 آپ دیکھیں جو بیلیں چڑھی ہوتی ہیں نا, کچھ کچھ جو پودوں کی جو ہے وہ بیلیں ہوتی ہیں, پھلوں کی, جیسے انگوروں کی بیل ہوتی ہے یا مختلف جو ہے وہ تربوز وغیرہ اور خربوزوں کی بیل ہوتی ہے, تو ان کو جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے اوپر تاکہ جو ہے وہ بہتر پھل جو ہے وہ لا سکے, خاص طور پر جو انگور وغیرہ کو. तो अब उसके लिए लफ्ज मारूशात इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इसके मादा जो अरशा है और इसका जो वर्ब है अरशा या अरश अरशन, किसी चीज पर छत या छप्पर डालना, यानी हर जो छत होता है, हर वो चीज होती है जो ऊपर जो है आप कह लें कनोपी की सूरत अख्तियार कर ले, वो अरश है और छत है। तो जो मारूश अरशा या अरश अरशन से जो मारूश मफ़ऊल के वजन है, ये जाहिर देखो और मफूल है, ये मफूल होगा तो वो चीज होगी कि छप्पर डाला हुआ, छत डाली हुई। तो मारूश मतलब है कि वो यानी जो चीज जिसकी छत डाली गई है, यानी अगर छत डाली गई है तो मतलब है कि अगर फिर उससे जो मारूशात के जो लफ्ज है ये मारूफ हो गया उसी के लिए, वो उन बेलों के लिए जो छपरों पे और छतों पे और मुंडेरों पे चढ़ाई जाती है, जैसे तरकारियों की है बेलें हैं या अंगूर की बेलें हैं, तो ये आप देखें कि इनको हमेशा जो है वो मुंडेरों पे और बेलों और छपरों पे चढ़ाया जाता है। तो उसके लिए फिर ये लफ्ज मारूशात जो है वो स्पेसिफिक हो गया है। इसका मतलब है कि वो बेलें जो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पे कि उसने वो बागात भी पैदा किए हैं जिनमें बेलें जो है वो छतों पे और मुंडेरों पे छपरों पे चढ़ाई जाती हैं, और उसने वो बागात भी पैदा किए हैं जिनकी बेलें या वो बेल जो है वो मुंडेरों पर नहीं चढ़ाई जाती। इसके ये मतलब है। वन नखल, और उसने नखल जो है खजूर के दरख्त पैदा किए, यानी नखलिस्तान पैदा किए। वह जरा, और वह जरा और खेती को, ये जरा जो है ये नखल तो जो है खजूर है, और जरा हर वो चीज जो जमीन से उगी हुई हो वो जरा है। इसी से लफ्ज जरात है कि जरात मतलब है उगाना, जो जमीन से उगाने को जरात कहते हैं। और जो है इसी से फिर वो है लफ्ज जुर्रा, बहुत ज्यादा उगाने वाला, यानी जुरा यो जब जरा जबीज कुफार जो है वो जो वो जो बहुत ज्यादा उगाता है मतलब किसान है। मुख्तलिफन उकुलुहू, मुख्तलिफन ये मुख्तलिफ लफ्ज है, मुख्तलिफन है, तनवीन है फन, तो इसके मतलब है मुख्तलिफ होते हुए। जब भी तनवीन होगी किसी लफ्ज के ऊपर तो ये उसका जो हाल बताते हुए, किसी अगर उसका किसी इसम के ऊपर है तो जाहिर ही उसका हाल बताएगी। मुख्तलिफ होते हुए क्या चीज, उकुलुहु उसका उकल, उकुल उकल। अच्छा, उकल जो है ये फल के लिए, मेवे के लिए, रिज प्रोड्यूस जो है किसी चीज का, उसके फल मुख्तलिफ होते हैं, खेती के जो फल है। वह जैतूना और जैतूनों को पैदा किया, वह रोमाना और अनार को पैदा किया, मुतशाबहन। अच्छा, ये पैदा किया क्यों तर्जमा की कर रहे हैं हम, बस जैतून और रोमाना और जैतून को पैदा किया और अनार को पैदा किया, कि शुरू के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी बहुवल्लज़ी, वही है जो अंशा उसने पैदा किया। अब उसने पैदा किया, आगे फिर पूरी जो है चीजें गिनवा दी गई है, मारूशात को पैदा किया, गैर मारूशात को पैदा किया, खजूरों को पैदा किया, खेतियों को पैदा किया, जैतून को पैदा किया, रुमान को पैदा किया, उनकी फिर क्या आगे बात सिफ्त है, मुतशाबहन ये मुशाबा होने वाले भी हैं और फिर जो है मिलते जुलते इन्हीं एक दूसरे के मुतशाबा हैं, वो गैर मुतशाबिन और एक दूसरे के मुशाबा न होने वाले भी हैं। उनमें से कई एक हैं जो जिनके फल एक दूसरे में मुशाबा होते हैं दिखने में, और उनके दरख्त भी इसी तरह मुशाबा होते हैं, उनके फल जो है मुशाबा होते हैं, और कुछ हैं वो बिल्कुल जो है मुख्तलिफ भी होते हैं। तो देखें कि ये रोजमर्रा का मुशाहिदा है। अल्लाह ताला ने फिर इरशाद फरमाया कुलू खाओ, मिन समर ही, मिन समर, समर जो है फलों को कहते हैं उर्दू का लफ्ज, उर्दू में इस्तेमाल होता है समर, इनके फलों को तो लोग खाओ उसके फल में से, यानी ये जितने अल्लाह ताला ने प्रोड्यूस इनका जिक्र किया है ये इनके तुम खाओ इनके फलों में से। कब, इजा, जब अहमरा, जब वो समर दें, जब वो फल आ जाए, जब वो फल उतर जाए, जब हार्वेस्टिंग हो उनकी। तो अहमरा हार्वेस्टिंग के टाइम में जो अहमरा, तो जिसमें उसमारन फल देना, फल पकना, फल चुनना जो है वो टाइम जो वक्त जो होता है, जब उसके फल जो है वो पक जाए, उसके फल जो है वो तैयार हो जाए, तो फिर खाओ। और एक वाव और लाया गया, एन ये मगायरत है, यानी गैर बताया गया कि एक तो तुम उसके फल खाओ और दूसरा काम करो, क्या काम करो, आतू हक्कहू, आतू आता याती आता यूती इतान जो है वो देना, बाबे फाल है देना, दो ये जो है देखें ये वो क्या है, वो है इंपेरेटिव है, ये जो है ये फेले अम्र है, वा आतू और दो हक का हूँ उसका हक, उसका जो हक है यानी तुम्हारी प्रोड्यूस का, तुम्हारी जो पैदावार हुई है उसका जो हक है वो दो। कब दो बता दीजिए, टाइम बता दीजिए। योम हसाद ही, योम उस दिन, हसादी हसाद इसके हसाद के दिन, और हसाद क्या है, फसल काटने का दिन। हसदा ये सौद वाला है, हसदा सीन वाला नहीं, हसदा या सुदो हसदन व हसादन, तो यही पे हसाद लफ्ज आया है। इसका मतलब होता है फसल काटना, किसी चीज को तहस नहस करना, फसल को काट के अलग के रख देना जो है, ये फसल वो है फसल, यानी फसल। योम दिन बताया गया, वक्त बता दिया गया, उसके फसल काटने के दिन तुम उसका हक दो। अब जाहिर है ये जो है ये इसकी तशरीह भी कर दी गई हदीस मुबारक के अंदर। और हसीद जो है इससे हम इसको पढ़ रही है, काटा जाने वाला अनाज जो है उसी से फिर हसीद है। अल्लाह ताला ने फरमाया अम्बतना भी जन्नाते व हब्बल हसीद, कि अल्लाह ताला ने उगाए ऐसे बागात और ऐसे गल्ले जिनको काटा जाता है, जैसे जो है गंदम, ज्वार, बाजरा, जो चावल वगैरह सारे, तो ये जो है हसीद है ये सब। वला तुसरिफू और ना इसराफ करो, तुसरिफू असरफ और युसरफ इसराफ, ना इसराफ करो। और इसराफ क्या है, इसराफ जो है सॉरी इसराफ जो है ये फिजूल खर्ची है, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, यानी जायज जरूरत पर जरूरत से ज्यादा खर्च करना। मतलब एक आदमी की जरूरत है जो है कुछ दो तीन जोड़े चार जोड़े कपड़े, लेकिन अगर उसकी 20 25 30 50 60 100 और जो है अलमारी और कमरे भरे हुए तो ये जाहिर इसराफ है फिर इस मामले में। तो ये इसराफ दिखा ना करो, तुम ऐसा ना करो। इन्नहू बेशक ला जो है वो पसंद नहीं करता वो अल्लाह ताला, यानी अल मुसरफीन जरूर से ज्यादा खर्च करने वालों को, जो एक्स्ट्रावेगेंट जो एक्स्ट्रावेगेंसी अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका तर्जमा पढ़ दे सकते।
और खुदा ही तो है जिसने बाग पैदा किए, छतरियों पर चढ़ाए हुए भी और जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए हुए वो भी, और खजूर और खेती जिनके तरह तरह के फल होते हैं, जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल सूरत में मुशाबे और मजे में मुख्तलिफ होते हैं, खाओ इनकी पैदावार और जबकि ये फलें, और अल्लाह का हक अदा करो जब इसकी फसल काटो और हद से ना गुजरो, कि अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता।
जाकल्ला। अब ये कुछ जो अल्लाह ताला ने जो ये पूरी सारी दुनिया, जब तक इंसान जिंदा रहेंगे सारी ये सारी चीजें जो है इंसानों के इस्तेमाल में रहेंगी, उनकी उनकी पैदावार है, उनकी खुराक है, ये सारी चीजें उनका अल्लाह ताला ने जो है जिक्र किया है। और इस हवाले से जो है, और यहाँ पे नया रुकू शुरू हो रहा है, तो ये जो नया रुकू है पूरा 17वां रुकू है, तो इसमें अकली अंदाज में भी और नकली अंदाज में भी मुशरिकीन के मुशरिकाना रवैये पे तनकीद की गई है। अभी हम बात करते हैं कि अकली क्या है और नकली क्या है, और बड़े जामे अंदाज में और बड़े मुदलल और बड़े जो है डेफिनेट अंदाज मुस्कत दलायल के साथ जो है, ये जो अब मुशरिकीन मक्का थे उनके जो गलत तसव्वुरात थे और कायदे थे उनकी खराबियों को जो है वाजे किया गया है। इंसानी गजाओं और खुराक के हवाले से अल्लाह ताला की नियमतों का जिक्र है यहाँ पे। अल्लाह ताला ने वो बागात पैदा किए जो वो जिनके तने अपने सहारों पे खड़े होते हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी पैदा की हैं जिनके तने जो है या जिनकी जो बेले होती है तने अपने सहारों पर खड़े नहीं हो सकते, उनको फिर जो है वो छतरियों पे चढ़ाया जाता है। तो अल्लाह ताला ने वो भी पैदा किए हैं, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फल पैदा किए हैं, मुख्तलिफ जो है उनके जायके हैं मुख्तलिफ फलों के। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सारी नेमतें अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा की हैं, इनको खाओ, और अल्लाह ताला का जो हक है यानी उसी दिन जिस दिन तुम फल उठाओ और पैदावार उठाओ उसी दिन उसका हक अदा करो। और ये उशर की तरफ जो है यानी जो प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस का जो हक है ये उसकी जकात, उसका उशर है, वो उसका उशर जो है दो, जिस रोज ये फल तुम उतारो और काटो उसी दिन। और इसराफ ना करो यानी बेमसरफ खर्च ना करो, अल्लाह को इसराफ करने वाले पसंद नहीं है। अल्लाह ने फिर हलाल जानवरों में से बार बरदार भी पैदा किए हैं जो बार यानी वजन उठाते हैं, और ऐसे जानवर भी पैदा किए हैं जो बोझ नहीं उठा सकते, और इनमें से भी खाओ यानी उनमें से भी कहा गया, और यानी ये जो दोनों किस्म के जानवर में से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, और किसी चीज को दलील के बगैर यानी जो अल्लाह ताला ने उतारी उनको हराम करार ना दो। तो अब जहां पे वैसे तो ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल वाजे हैं, इनमें से एक चीज का जिक्र जो है हम करेंगे कि उशर जो है, खासतौर पर देखिए कि उशर कमानी जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है कि जिस दिन भी प्रोड्यूस तुम्हारी पैदावार किसी चीज की, कोई भी पैदावार हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ, हत्ता कि सब्जियों की पैदावार भी हो, फलों की पैदावार हो, और जो है गंदम की और जौ की और बाजरे की और दूसरी जो है मुख्तलिफ किस्म के अनाज और गल्ले हैं और बड़ी क्रॉप्स हैं, कोई भी क्रॉप जो है पैदा हो, तो फिर उसकी जो है उसमें से उशर अदा करो, 10वां हिस्सा। ये जमीन की पैदावार की जकात है, और उशर का मसरफ भी फिर वही है जो जकात का मसरफ है, यानी वही जगहों पे उशर भी दिया जाएगा जहां पे जकात दी जाती है, और इसके मुस्तहकीन भी वही होंगे जो जकात के मुस्तहकीन है। अब देखिए इसकी तशरीह जो है मुख्तलिफ अहादीस मुबारका के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है, और इसमें जो है वो फर्क एक ये है कि बारानी जमीनों में जहां पाशी का कोई सामान नहीं है, सिर्फ बारिश पे पैदावार का मदार होता है, यानी बारानी जमीन में क्या होता है कि जो है वो जो बीज है डाल दिया जाता है और फिर जो है वो इंतजार किया जाता है बारिश का, तो इन जमीनों की पैदावार का 10वां हिस्सा बतौर जकात निकालना वाजिब है। और जो जमीनें कुओं से सैराब की जाती हैं, ट्यूबवेल से की जाती हैं या नहरी निजाम से की जाती हैं, उनकी पैदावार का 20वां हिस्सा जो है वो उशर की सूरत के अंदर अदा किया जाएगा। और ये फर्क क्यों है, ये जाहिर है इसके ऊपर जो खर्च आता है, इसके ऊपर जो जो है वो देखभाल की जाती है, और रिसोर्सेज जो खर्च होते हैं वो उन रिसोर्सेज की बिना के ऊपर जो है इसका जो उशर का जो हिस्सा है वो मुख्तलिफ है। हाँ, उशर का एक याद रखिए कि उशर का कोई निसाब नहीं है, यानी जैसे जकात का तो निसाब होता है कि आप इतनी चीजों के मालिक होंगे तो उसके बाद जो निसाब क्वालिफाई करेंगे तो फिर उसके बाद आप जकात अदा करेंगे, लेकिन उशर के नहीं, उशर बिल्कुल चाहे थोड़ी सी पैदावार आपकी हुई है, चाहे ज्यादा हुई है, चाहे एक फसल है या चाहे दूसरी फसल है, या चाहे सब्जियां हैं या चाहे फल हैं, हर चीज के ऊपर जो है वो उशर लाजमी है। अच्छा, अब ये जो है ये जो कानून इसका जिक्र हुआ 10वें और 20वें का, इसको जो है अच्छी तरह भी जान लें, क्योंकि ये एक उसूली कानून है। कानून जकात में शरीयत इस्लाम ने हर किस्म की जकात में इस बात को बुनियादी उसूल के तौर पर इस्तेमाल किया है कि जिस पैदावार में मेहनत और खर्च कम है उसमें जकात की मिकदार ज्यादा, और जितनी मेहनत और खर्च किसी पैदावार में बढ़ता जाएगा इसी हिसाब से जो है उसकी मिकदार जकात की मिकदार भी कम हो जाएगी। ये जो असूल है और इसी असूल के ऊपर जो है ये जकात और फिर उशर के भी जो किया गया। अब इसकी मिसाल को हम जो है वो देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स को कोई कदीम खजाना मिल गया है बहुत बड़ा, या किसी शख्स की जमीन से जो है वो तेल निकल आया है या सोने चांदी की कान निकल आई है, तो फिर उस पे जो है ये जाहिर अल्लाह ताला ने उसको दे दिया है और उसमें उसकी कोई मेहनत दाखिल शामिल नहीं है, तो इसका 5वां हिस्सा जो है 20% जो है उसका उसके जकात उस पर लाजिम है, क्योंकि मेहनत भी नहीं है, उसका खर्च भी नहीं है, पैदावार जो है बहुत ज्यादा है, पैदावार वो है मतलब बहुत वैल्यूएबल है, और तो उस फिर जो है वो उसको 5वां हिस्सा देना पड़ेगा। अब उसके बाद बारानी जमीन का नंबर आता है। देखिए बारानी जमीन भी इसी तरह है कि उस पर मेहनत बहुत कम है, खर्च भी कम है, तो फिर क्या होगा, उसकी जो जकात है 5वें हिस्से से जो है वो आधी कर दी गई है, 10वां हिस्सा कर दिया गया है। ठीक है, तो वो 20% था, अब पहले जो हिस्सा तो अब ये 10% का हो गया है। इसके बाद फिर जमीन है जो जिसको कुएं या नहरी पानी से जो खरीद कर जिसे सैराब किया जाता है, तो उसमें मेहनत और खर्च बढ़ गया है तो जकात उससे भी आधी कर दी गई है, 10वें हिस्से की बजाय फिर 20वें हिस्सा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है देखें कि जो है मजीद कम कर दिया गया। और उसके बाद फिर नकद जो है ये सोना ये चांदी ये माल तिजारत जिनके हासिल करने और बढ़ाने पर फिर और ज्यादा, आपको पैसा हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप उन पर कारोबार करना पड़ता है, जॉब्स ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, और जो है उस पर काफी मेहनत इंसान को करना पड़ता है, अगर बिजनेस है तो काफी जो है उस पर टाइम लगाना पड़ता है, मेहनत भी ज्यादा है, इसीलिए उसकी जकात यानी पिछला जो है 20% उसकी भी कम कर दी गई उससे भी, और 40% कर 2.5% कर दी गई है। तो देखेंगे यूं इस तरीके से ये इस्लाम का जो उसूल है और इसको जो है वो याद रखें। वमिन अल अनाम, और उसने पैदा किए मवेशियों में से। अब ये जो आयत है ये एक उसूल बयान किया गया, सबके अंदर एक ही है, और उसको हम इकट्ठा इंशाल्लाह जो है देखें। वमिन अल अनाम, और मवेशियों में से हमूलतन, हमला जो है वो वजन उठाना होता है, हमूला बहुत ज्यादा वजन उठाने वाला, ये बार बार ये रिपीटेडली या ऑफ्टनली वजन उठाने वाला जो है वो फिर जान जो वो जानवर जो वजन उठाते हैं, जिनमें वजन डाले जाते हैं, घोड़ा ऊंट खच्चर वगैरह उनका, और इनमें से अल्लाह ताला ने वो भी पैदा किए हैं जो कोई बकसरत बोझ उठाने वाला है, वो फर्शन, और वो भी हैं जो नीचे लगे हुए होते हैं फर्श, ये इस्तियारा है जो जमीन से लगे होना, यानी एक तो होते हैं जो स्टैंडिंग है और ऊंट है और खच्चर है और घोड़ा है, तो ये ऊंचे हैं और जो है ये वजन उठा सकते हैं, और फर्श जो है जमीन से लगी हुई है जो वजन नहीं उठाते, जो ये फर्शन जो है ये छोटी जिसामत की तरफ जो है ये इस्तियारा है, जैसे भेड़ है और बकरी है तो ये वजन नहीं उठाती। कुलू खाओ, मिम्मा उसमें से, रज़ाकुमुल्लाह जो अल्लाह ताला ने तुमको दिया रिज़्क, वला तत्तबिउ और इत्तेबा ना करो, और ना करो इत्तेबा पैरवी, खुतवात शैतान, ये इसको हम पहले पढ़ रहे हैं, खुतवात जो है खुतवा की जमा है, खुतवा जो है फुट स्टेप को कहते हैं, किसी खत जो होता है किसी वो जो किसी एक कदम के पीछे अगला कदम जो होता है वो कदम के बाद जो कदम है, ये खुतवा है, दो कदमों के दरम्यान का जो 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 फासला होता है ये खत कहलाता है, खुतवा जो है तो उसके मतलब कुश कदम से मानी हुआ खुतवा, तो उसकी जमा जो है इन्नहू बेशक वो, लकुम तुम्हारे लिए, अदोवन अदोव है यानी दुश्मन है, मुबीन खुला, बेशक तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है, फरमाया समानियत अजवाजिन, समानिया समानिया आठ अजवाज, आठ पैदा की और उसने पैदा किया, देखिए याद करें कि उसने कहा वहुवल्लज़ी अंशा, उससे फिर बात आगे चली जा रही है, और उसने पैदा किए, अब ये ब्रैकेट में उसने पैदा किए, जाहिर है यहाँ पे कोई लफ्ज नहीं है उसने पैदा किए, लेकिन वो बात वही चल रही है, उसने पैदा किए समानियत अजवाज, आठ जोड़े पैदा किए। अच्छा जौज जो है अजवाज जो है जौज की जमा है, जौज कहते हैं एक को कहते हैं जो अपनी ही जिन्स का कोई दूसरा उसका जुफ्त हो, यानी अगर कोई एक कम एक करीब करीब एक जैसी चीजें जो है जैसे मर्द और औरत है तो एक दूसरे के जौज है, तो उनमें से हर एक को जो है वो जौज कहेंगे, अगरचे बाज़ औक़ात दोनों के ऊपर भी जौज का जो है इतलाक होता है, तो जो है वो जौज आठ अजवाज हैं, आठ जौज हैं, लेकिन उर्फ और मुहावरे की रूह से ये चार जोड़े फिर बनेंगे, जैसे लेकिन जो है जौज के जैसे हमने कहा कि हर एक को भी जौज कहते हैं, यानी मर्द एक जौज है और जो है वो बीवी एक जौज है, लेकिन जो है ये दोनों जो है जौजैन भी कहलाते हैं कि दो जौज जो है, मिनद मिनदानिफ्नैन, ओके जो पैदा किए हैं आप वो बता दिए कि वो कौन से आठ जोड़े हैं, मिनदानिफ्नैन तो इसने दो, और मैदान जो है ये भेड़ है, भेड़ में से दो। अच्छा ये दाना जो है लफ्ज जो है दाना, ये पूरा वर्ब है अरबी के अंदर, और ये वर्ब है दाना, अगर भेड़ों को और दुम्बों को बकरियों से अलग कर दिया जाए तो ये अलग करने का जो अमल है ये दाना है, तो इस वजह से, और खास तौर पर देखिए कि अगर आप भेड़ों को दुम्बों से अलग कर रहे हैं तो दुम्बों को सॉरी अगर आप भेड़ों को बकरियों से अलग कर रहे हैं तो ये भी अमल भी है कि बकरियों को दुम्बों से अलग कर रहे हैं, लेकिन अरबी ऐसी जबान है कि बकरियों को अगर अलग करना है दुम्बों से तो उसके लिए अलग वर्ब है, और अगर दुम्बों को बकरियों से अलग करना है तो उसके लिए अलग वर्ब है, और दोनों यहां पर इस्तेमाल होंगे वर्ब, तो जाहिर है फिर दान का मतलब है दुम्बे, क्योंकि दुम्बों को आप अलग कर रहे हैं, भेड़ मतलब हो गया, तो भेड़ में से दो जो है, और खासतौर पर ये जो वो भेड़ होती है ना ऊन वाली भेड़ होती है या दुम्बा, ये उस जो है ये दान जो है खास तौर पर उसके लिए इस लफ्ज इस्तेमाल होता है, ऊन वाली भेड़ से दुम्बा। वह मिनल मा विफनेन, और जो है इसने दो पैदा किए माद में से, माद जो है वो बकरी के लिए, मादा अब यह दूसरा वर्ब आ गया है, मादा का मतलब होता है कि अगर भेड़ बकरी मिक्स हैं तो उन भेड़ों में से बकरियों को अलग करना, बकरियों को भेड़ों में से अलग करने के लिए मादा लफ्ज इस्तेमाल होता है, और भेड़ों को बकरियों से अलग करने के लिए दाना लफ्ज इस्तेमाल होता है, वर्ब इस्तेमाल होता है, ये दोनों वर्ब है, इससे फिर जो है इसमी बने दान, इसम बना है जो ऊपर आया मिन दान इसने, और फिर मास जो है वो दूसरा जो है वो इसम बना है मिन अलमास इसने बकरी में से दो, तो यूं इस हिसाब से वर्ब वर्ब में से इसमी जो जैसे बनते हैं इनमें से ये भी बने, मास जो है जिन इसम जिन से यानी तमाम की तमाम बकरियां, तो अब और बकरी में से भी दो पैदा किए, कुल आप फरमा दीजिए, कह दिए आ ज़करैनि, आ क्या ज़करैन दो मुज़क्कर, तो आप पूछिए क्या दो मुज़क्कर को हर्रमा حرام کیا عمل انثیین یا دو انس کو. انثیین جو ہے یہ انسا, اچھا ذکرین جو ہے یہ ذکر یعنی مذکر کا تثنیہ ہے, دو ذکر ایک مذکر ایک نر, اور ذکرین دو نر یا دو مذکر, اور انسا جیسے آپ کہتے ہیں انسا عورت جمادہ مونس ایک مونس اور انثیین دو مونس. تو اللہ تعالیٰ فرمایا آپ پوچھئے کیا دو مذکر کو حرما حرام کیا امل انسجین یا اس نے دو مونس کو وہ جو ہے وہ حرام کیا. تو وہ کیا ہے, یہ کیوں سوال کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے اس کو حرام کیا اس کے لیے, اس کو حرام اس کے لیے کیا, تو یہاں پہ اس کا نفی کی جا رہی ہے. اما اشتملت اما یا پھر اشتملت علیہ اس کو لپیٹیں جس پر. اچھا یہ مشتمل جو لفظ ہوتا ہے اسی سے نکلا اشتملا, یہ لفظ تو ہے جو ہے بڑا وہ لفظ ہے جس کو مطلب بڑا تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے, یا پھر کہہ لیں کہ یہ بڑا کثیر المعنی لفظ ہے. شمالا شمالا کا مطلب ہوتا ہے بائیں جانب لینا. اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ بائیں جانب میں اس میں معنی پیدا ہوئی ہے کہ جو عرب ہوتے تھے یہ سمتوں کا جو تعین کرتے تھے خانہ کعبہ سے, قبلہ سے خانہ کعبہ, وہ کہتے تھے کہ خانہ کعبہ ایک اگر انسان کی شکل میں ہو جس کا منہ جو ہے دروازہ آپ کو پتا ہے مشرق کی طرف ہے, اور اسے اگر منہ مشرق کی طرف ہے تو جو بایاں جو آپ کہہ لیں کہ بایاں جو اس کا بازو ہے بائیں طرف جو ہے تو وہ شمال ہے اس کو, اور وہی لفظ آپ کو پتا ہے کہ وہ شمال کہلاتی ہے, وہ نارتھ سائڈ ہے جو بائیں طرف ہے آپ کو پتا ہے جہاد کا جو علاقہ ہے وہ اس طرف پڑتا ہے, یا پھر اس کی جو دائیں جانب ہے آپ کو پتا ہے وہ زمین کہلاتی ہے, اسی پہ رکن یمانی آپ کو پتا ہے, اور اسی سے ملک کو نام بھی انہوں نے دیا ہے یمن, وہ کہتے ہیں یہ خانہ کعبہ کے دائیں طرف ملک جو ہے تو اس کو یمن کہا ہے, تو جو یوں پھر اس طریقے سے نام دیتے تھے. تو شملہ کا معنی ہوتے تھے. اچھا بائیں طرف ہونے کو وہ منحوس خیال کرتے تھے آپ کو پتا ہے عربوں میں, اسی وجہ سے وہ پرانے زمانے میں بھی ہر کام دائیں طرف چیز سے کرتے تھے اور اسلام نے اس کو جو کنٹینیو رکھا ہے, تو بائیں جانب میں وہ منحوست شمار کرتے تھے یا اچھا خیال نہیں کرتے تھے. اچھا پھر اس کا اپنا مطلب ایک اور بھی ہوتا ہے, کسی چیز کو کسی چیز میں لپیٹنا بھی ہوتا ہے. اشتمل یشتمل اشتمال کسی چیز پر کسی چیز کو پورا لپیٹنا شامل ہونا. اسی سے یہ جو چادر ہوتی تھی عام چادر جو ہوتی تھی جو ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی جن سردیوں میں یا اپنے انسان جو ہے سفر کے دوران میں قرآن اپنے اوپر لیتا تھا اس چادر کو بھی وہ شمال کہتے تھے. یا پھر آپ کو پتا ہے اس کے بعد ہم نے ایک لفظ نکالا ہے شملہ. شملہ جو لفظ ہے یہ پگڑی کا وہ سرا ہوتا تھا, پگڑی باندھتے تھے پگڑی کا وہ سرا جو بائیں جانب لٹکا رہتا تھا تو وہ حصہ شملہ کہلاتا تھا. اگرچہ ہندوستان پاکستان کے اندر جو پگڑی کا بائیں طرف کا وہ اوپر اٹھا ہوا ایسا ہوتا تھا وہ شملہ کہلاتا تھا. اچھا اس سے پھر ایک اور معنی بھی پیدا ہوئی ہے چونکہ وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے قرآن سے اور حدیث سے. اچھا دیکھیں کوئی چیز جو لپٹی ہوئی ہو کسی کے ساتھ جیسے چادر لپٹی ہوئی ہے, اگر انسان کی صفات میں سے کوئی چیز انسان کے ایسے اس کے ساتھ ہے جیسے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے جڑی ہوئی ہے امبیڈیڈ ہے اس کے اندر, تو پھر وہ چیز بھی شمال کہلاتی تھی, اور اس کی جمع پھر شمائل کہلاتی ہے, انسانی وصف انسانی خصوصیات. اسی لیے پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لفظ نکلا ہے شمائل ترمزی, شمائل ترمزی آپ کو پتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر مشتمل احادیث اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ شمائل کہلاتا ہے. یعنی یہ شمائل جو ہے جو سیرت النبی میں سٹڈی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسا جو وصف ہیں اور خصوصیات ہیں آپ کا جو حلی مبارک اور دوسرے جو چیزیں ان کا جو ہے یہ شمائل کہلاتا ہے. تو یہ یوں یہ لفظ بڑا کثیر المعنی لفظ ہے. اچھا جو وہ جو جس کو اس کو لپیٹیں جس پر ارحام الانثیین, ارحام رحم کی جمع یعنی بچہ دانی, انثیین جو ہے مونس دو مونس کی بچہ دانی ہے جس کو لپیٹیں جس پر, تو اس سے مراد ہے کہ وہ جو پیٹوں میں ہے یعنی جو بھی بچہ جنین کی صورت کے اندر پیٹوں میں ہے. نبے اونی نبے اونی تم خبر دو نی مجھ کو بے علم علم کسی علم کے سے علم سے علم کے ساتھ مجھے خبر دو بتاؤ مجھے علم کے ساتھ اگر تمہارے پاس کوئی ہے تو ان کن تم اگر تم ہو صادقین سچے. اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں
फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी और बारबारी का काम बारबरदारी का काम लिया जाता है, और वो भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। खाओ उन चीजों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी हैं, और शैतान की पैरवी ना करो कि तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये 8 नर और मादा हैं, 2 भेड़ की किस्म से और 2 बकरी की किस्म से। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कि अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हो। ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो।
अब देखिए, ये वो जो आखिरी बात की गई, इससे पहले हमने कहा ना कि अकली और नकली दलाए, तो ये वो आखिरी बात जो है पूछी गई है कि तुम बताओ अल-इल्म के साथ ये नकली दलायल होते हैं। अगर किसी साथी ने पहले पूछा था कि नकली दलायल, नकली दलायल वो हैं जो नकल किए गए हैं। नकल का मतलब ये नहीं है जो नकल उर्दू में नकल मारना होता है, इसका मतलब होता है कि कॉप जो है जो मुंतकिल हो रहे। नकल जो है आपको पता है कि अरबी में तब मुंतकिल होने को कहते हैं, तो जो मुंतकिल हो रहे हैं अम्बिया अलैहिस्सलाम से और शरीयतों से और अल्लाह ताला ने उनको उतारा है, और नकल और नस्ल दर नस्ल जो दलायल और जो तालीमात मुंतकिल हो रही है वो नकली दलायल है सारे। तो अल्लाह ताला बताओ कि तुम तो कोई है कहीं पे अल्लाह ताला ने इनको जो है वो उतारा हो, अल्लाह ताला ने इनको किया। तो अकली भी कहा गया है और नकली भी दलायल, ये दोनों से जो है वो कहा गया है। और आगे जो है वो अभी इसको हम इकट्ठा करते हैं, चूंकि ये 8 पूरे नहीं हुए हैं। वमिनल इबलिस 9, और मिनाल इबले और इबल जो है आपको पता है ऊंट के मानी होता है, और ऊन में से 2 पैदा किए। वो मिनाल बकरे से 9, और बकर यानी गाय में से 2 जो है वो पैदा किए हैं। कुल आप फरमा, ये बिल्कुल वही अल्फाज हैं। फिर आगे आप पूछिए, कह दीजिए, आजा कराई ने क्या 2 मुजक्कर हर्रमा, उसने हराम किया, अमिल उनसा यैन, या उसने 2 मुअन्नस को हराम किया, उसने ये 2 मुजक्कर हराम किए या 2 मुअन्नस हराम किए। अम्मश्तमलत अलैहि, वही है, या जिसको लपेटें जिस पर, अरहामुल उन्सयैन, 2 मुअन्नसों के रहम, 2 मुअन्नसों की बच्चादानियां जिस पे लपेटें या जिसको अंदर शामिल करें। ये लपेटना शामिल करना ये दोनों मानी है, यानी 2 मुअन्नस की बच्चादानियों में जो कुछ शामिल है या उसके अंदर जो कुछ दाखिल है, यानी बच्चा जो है नया। अम या कुन तुम थे शोहदा, तो या तुम थे मौजूद थे वहां पे, गवाह थे तुम। इज वस्सा कुमुल्लाह बिहादा, इज जब वस्सा जब उसने वसीयत की, कुमुल्लाह अल्लाह ने तुमको बिहादा इसकी, जब ताकीद की तुमको अल्लाह ने उसकी, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे। अच्छा, ये जो वस्सा जो वसी वसीयतन, ये ताकीद के मानों में आया है यहाँ पे मानी, तो अरबी के अंदर वसीयत का मानी जो है ताकीद होता है। अगरचे वसीयत जो है उर्दू के अंदर ज्यादा मारूफ मानी जो है, कोई शख्स मर रहा हो तो उस वक्त जो वो नसीहत करता है वो वसीयत कहलाती है, वो भी ताकीदी तौर पे होती है, उसको पूरा करना लाजमी होता है, इसलिए जो है वो वसीयत के मानों में आता है। तो वसीयत का मानी जो है ये दोनों मानी है कि ताकीदन कोई चीज बात कहना। फमन अज़लमु, और कौन ज्यादा, फमन और कौन अज़लमु ज्यादा जालिम है बढ़कर, कौन बड़ा जालिम है बढ़कर, मिन मन है उससे जो इफ्तरा जिसने घड़ा, अल्लाह है अल्लाह के ऊपर कदेबा झूठ, उससे बढ़कर कौन जालिम है जिसने अल्लाह के ऊपर झूठ कर जिन्हीं चीजों को अल्लाह की तरफ मनसूब कर दिया। लिजुदिल्लन्नास ताके, क्यों घड़ा झूठ अल्लाह पर, लिजुदिल्लन्नासा ताके गुमराही में पड़ जाए लोग, बगैर इल्म, और ये बगैर इल्म के बगैर उसने किया ऐसा। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अल्लाह जादी हिदायत नहीं देता, अलकौम जालिमी जालिम कौम को, या जो है जुल्म करने वाला गिरोह है उसको अल्लाह ताला नहीं देता। इसके तर्जुमा पढ़ सकते,
और इसी तरह 2 ऊंट की किस्म में से हैं और 2 गाय की किस्म से पूछो, इनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो ऊंटनी और गाय के पेट में हो, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का हुक्म तुम्हें दिया था। फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात के ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को राह रास्त नहीं दिखा।
अब बजाय तो ये सारे जो है जानवरों के हराम और हलाल की बात की गई है, लेकिन उसके बाद जो सबक दिया गया वो ये है कि देखो अल्लाह की तरफ जो है झूठ करना, अल्लाह के साथ जो है वो ऐसा करना, या अपनी तरफ से कोई चीज हक और हलाल और हराम और हलाल और हक और नाहक और झूठ और जो है सच को अपनी तरफ से लोगों को बता देना और लोगों को बयान कर देना ताकि लोग जो है वो गलत उसमें बढ़ जाए रस्म रिवाज के अंदर, ये अल्लाह ताला को सख्त ना पसंद है। अल्लाह ताला जो है वो ऐसे लोग जुल्म करने वाले हैं और उनको जो है वो पसंद नहीं करते, उनको अजाब देगा। ये जानवरों की हुरमत इल्लत के बारे में उनके जो अकायद थे उसका जो है उसका बतलान उसकी रिफ्यूट किया गया है। और देखें कि अरबों से अरबों इस्लाम से केवल जो अरब थे उन्होंने अपनी जहालत में इन चौपायों को हराम, किसी को बहीरा, किसी को साहिबा, वसीला और हाम, ये हम पढ़ाए हैं सूरह जो है इससे पहले सूरह बकरे के अंदर भी और सूरह मायदा के अंदर भी पढ़ा है। अल्लाह ताला ने इनमें कोई चीज ऐसी है जो हराम नहीं की है। यहाँ पे ये बताया गया मुशरिकीन ने बाज जानवरों को अपने महज गुमान से और अपने अपने तखमीन जन से जो हराम करार दे दिए कि उसकी कोई इल्मी दलील नहीं है। पहली तो बात यह कि इल्मी दलील से क्या मुराद है? इल्मी दलील से मुराद है जो इंसान को यानी अकल को जो अकली इल्मी दलील है कि जाए किसी जाहिलाना यानी जो हराम है क्या किसी जाहिलाना निजाम की बुनियाद पर हराम है, यानी इनको किसी जाहिलाना निजाम ने हराम करार दिया है, या फिर वो जानवर मुजर सेहत होने की बिना पर हराम है, या क्या वो अखलाको रूहानियत के लिए उन पे बुरा असर पड़ता है इस वजह से हराम है, या फिर ये इंसानी जौके सलीम पर गिरा है क्यों हराम, कोई ऐसी कोई दलील है? इनमें से कोई दलील नहीं है। या फिर नकली दलील जो है पेश कर अल्लाह ताला ने कहा कि क्या कहीं पे आसमानी किताबों के अंदर या अल्लाह के रसूलों ने शरीयतों में इनको हराम करार दिया है, तो वो भी नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अल्लाह ताला ने मवेशियों के जो 8 जोड़े पैदा किए हैं उनसे आप उनके बारे में सवाल किया गया है कि चाहे ये नर हों या मादा हों या दोनों हों मादाओं के पेट में जो बच्चे हैं इनको किसने हराम किया है, इनको मर्द भी खा सकते हैं, इनको औरतें भी खा सकती हैं, कोई ऐसी तख़सीस नहीं है। तुमने जो ये सारा कर रखा है ये सारा मन घड़त है अपने तई तुमने कर रखा है, अल्लाह ताला की तरफ से इनको कोई निस्बत जो है नहीं है। कि कितना जुल्म है कि जिन जानवरों को अल्लाह ताला ने हलाल बनाया है तुम बगैर किसी दलील के उनको हराम बनाओ। अच्छा देखिए आखिर में जो जलाफ कहा गया कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात कहे ताकि लोग गलत रहनुमाई जो है लोगों को गलत रहनुमाई हो और अल्लाह ऐसे जालिमों को रहनुमाई नहीं देता। इस्लामी तालीमात में ये बुनियाद नहायत अहमियत की हामिल है कि इस्लाम में हलाल और हराम का जो हक है ये अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं है। रसूल भी इसी में कोई कमी बेशी न कर सकते थे और रसूलों में से भी किसी ने भी ऐसा कभी नहीं किया। मुशरिक अकवाम ने अल्लाह के इस हक में जब और जहां भी तसरफ किया है तो अल्लाह ताला ने बताया उन्होंने ये शिर्क का इर्तिकाब किया, बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया, इसलिए कि हुक्म देने का असल हक और जो है वो हाकिम असल हाकिम जो है अल्लाह ही है। इसी मानी इस मानी में तो असल हाकिमियत जो है अल्लाह ताला की है। उसे फरमाया कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, जो हुक्म है वो सिर्फ अल्लाह का है। इस कायनात पे असल हाकिमियत अल्लाह ताला ही की है और इसी अल्लाह ताला की हाकिमियत के साथ जो है लोग इंसान जो है वो कर सकते हैं हुक्मरानी कर सकते हैं और इसी हाकिमियत के तहत जो है वो अपनी कानून साजी कर सकते हैं और जो है वो यानी खुदा के मुल्क में उसकी दी हुई हिदायत के मुताबिक जो 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 कानून साजी है वो कर सकते हैं और उसके अंदर रह के काम कर सकते हैं। और फिर तमाम अहले ईमान जो है वो बराबर का हिस्सेदार होती हुई अपने साहिब राय साहिब किरदार मोतमद नुमाइंदे जो हैं यानी हुक्मरानी करने वाले उनके जरिए अपना इख्तियार और हक हुक्मरानी या हक खिलाफत जो है किसी शख्स को सपोर्द करते हैं। ये इस्लाम में जो है सही तरीका है। लेकिन आप यह बात भी जान लीजिए, जो बात जो बताने के लिए मैंने कही है वो ये है कि आप देखें कि इस्लाम के बरक्स क्या हुआ, ईसाइत में क्या हुआ कि सेंट पॉल ने न सिर्फ हलाल और हराम बल्कि पूरी की पूरी शरीयत मूसवी जो थी या जिसको रिवाइव किया था ईसा अलैहिस्सलाम ने, वो पूरी शरीयत साकित कर दी और एक दीन इलाही पूरे का पूरा एक दीन जो था वो अगवा हो गया। और इस अगवा की जो जो मजाहमत है वो सिर्फ जो है बरनबास जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के डिसाइपल्स में से और उनके कुछ साथियों ने मजाहमत की और इस मजाहमत के खत्म हो जाने के बाद ये जो नया अगवाशुदा दीन था ये जो पॉलिज्म है जिससे आजकल लोग जो ईसाइत के नाम से जानते हैं ये जमहूर का दीन जो है वो बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस्लाम के अंदर कभी भी जब भी लोग इस्लाम से हटते हैं तो इस्लाम की तालीमात जो है ये बिल्कुल वाजे हैं और रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी सुन्नत मुबारक और अल्लाह ताला का भेजा हुआ कुरान मजीद इसकी तालीम से लोग फिर जो है इसको चैलेंज कर रहे थे। तारीख में कई मरतबा हुआ कि लोगों ने इस दीन को जब बदलने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने कोई जो है वो शख्स खड़ा कर दिया और लोग उनके पीछे जमा हो गए और यूं ये जो है ये हराम व हलाल का जो जो है ये दीन को شکل بگاڑنے کا جو کام ہے، یہ اسلام میں پھر نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا.